श्री जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत आज लीला अध्याय चार श्लोक संख्या 72-81 का तो पहले के साथ श्लोक में पढ़ रहा हूँ 81वें श्लोक शेष पट में लिखा हुआ है जिसे हम लोग साथ पढ़ेंगे। आनंद चिन्मय रथ प्रतिभा विसाधि साधिर्य एव निज रूप कया कला गोलोक एव निवसत किलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अपने निजी धाम गोलोक में अपने ही आध्यात्मिक स्वरूप के सदृश एवं रागनी शक्ति से युक्त राधा के साथ निवास करते हैं। उनकी संगिनियाँ उनकी वे विस्तृत सखियाँ हैं जो उनके शारीरिक स्वरूप की अंश हैं और नित्य आनंद में आध्यात्मिक रस के ओत प्रोत हैं। तात्पर्य ये श्लोक ब्रह्म संहिता 5:37 से लिया गया है। किसने कराए जैसे रस आस्वादन क्रीड़ा रहा जैसे सुन विवरण। आप कृपा करके सुनिए कि किस तरह है कृष्ण की प्रियतमाएं उन्हें रस का आस्वादन कराने में तथा उनकी लीलाओं में सहायक बनती हैं। कृष्ण कांत गण देखी त्रिवेद प्रकाश एक लक्ष्मी गण पूरे महि गण खान गण रूप हार कांता गण खान श्री राधिकाए से कांता गणे रिस्थान। श्री कृष्ण की प्रेमिकाएं तीन प्रकार की हैं। आप ध्यान सुनिए तीन प्रकार की हैं। एक तो है लक्ष्मियां, दूसरी महिषियां और तीसरी वृष्टि गोपिकाएं। ठीक है, तीन प्रकार की कांताएं हैं कृष्ण की। एक तो लक्ष्मियां, वे किसके साथ रहती हैं जो विष्णु विस्तार हैं कृष्ण के जितने विष्णु हैं उनके साथ रहती हैं। कृष्ण के जितने भी अवतार हैं उनके साथ लक्ष्मी रहती हैं। और दूसरी महिषियां, महिषियां मतलब द्वारका की पत्नियां और तीसरी हैं वृष्टि गोपियां जो इन तीनों में सर्वोपरि हैं। ये जो वृष्टि गोपियां हैं ये तीनों में सर्वोपरि हैं। ये सारी प्रेमिकाएं राधिका से निकली हैं। अवतारे कृष्ण जैसे करे अवतार अंशिनी राधा है जैसे नाने राजस्थान। जिस प्रकार उच्च रूप कृष्ण सारे अवतारों के कारण है उसी प्रकार राधा इन समस्त प्रेमिकाओं के कारण है। वैभव गण जैन तार अंग विभूति बिंब प्रतिबिंब रूप माही से रखाती। लक्ष्मियाँ श्रीमती राधिका की अंश हैं और महिषियाँ उनके बिंब की प्रतिबिंब हैं। लक्ष्मियाँ महिषियाँ और ब्रज गोपियाँ ये क्रम से जो है मतलब ये श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर होती जाती है। लक्ष्मी गण तार वैभव रूप महेशी गण वैभव रेखा से स्वरूप। लक्ष्मियाँ उनकी अंश हैं और भी वैभव विलास रूपों को प्रदर्शित करती हैं। महेशियाँ उनके वैभव प्रकाश के स्वरूप हैं। तो ये थोड़ा अंतर है। लक्ष्मियाँ वैभव विलास हैं और महेशियाँ वैभव प्रकाश हैं। किसकी? राधा रानी की। आकार स्वभाव भेद ब्रज देवी गण काय दिव्य रूप तेरे कारण। ब्रज देवियों के विविध शारीरिक स्वरूप होते हैं ये उनकी अंश हैं और रस विस्तार के साधन रूप हैं। तो लक्ष्मियाँ और महेशियों की चर्चा करने के बाद अब ब्रज गोपियों की चर्चा कर रहे हैं।
कृष्णदास कविराज
और लक्ष्मियाँ वैभव विलास है और महिषियाँ वैभव प्रकाश है। उसी प्रकार से लक्ष्मियों के साथ जो पति हैं उनके वो भी कृष्ण के वैभव विलास हैं, है ना, और जो महिषियों के पति हैं है? वो कृष्ण के वैभव विलास हैं, है ना। बहु कांता देना नए रथे रे उल्ला लीला रे कहाँ है लाजू बहुत प्रकाश। प्रेमिकाओं कितना रथ में ऐसा उल्लास नहीं रहता, अतः भगवान की लीलाओं में सहायता करने के लिए श्रीमती राधा रानी की अनेक रूप हैं। अब मेरे दुख बोले तार मध्य ब्रज नाना भाव रथ भेजे कृष्ण के पराय रथ अधिक लीला स्वादे तार मध्य ब्रज नाना भाव रथ भेजे कृष्ण के पराय रथ अधिक लीला स्वादे। धन्यवाद। मेरे पिछ बोलिए किन प्रेमिकाओं के ब्रज में कई समूह हैं जिनके नाना प्रकार के भाव तथा रस होते हैं, वे कृष्ण को रास नृत्य तथा अन्य लीलाओं की सारी माधुरी का आस्वादन कराने में सहायक होती हैं।
तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कृष्ण तथा राधा दो होकर भी एक हैं, वे अभिन्न हैं। कृष्ण अपना विस्तार पुरुषों के रूप में अनेक अवतारों तथा अंशों में करते हैं। इसी प्रकार श्रीमती राधा रानी भी लक्ष्मियों महेशियों तथा गजमालाओं के विविध रूपों में अपना विस्तार करती हैं। श्रीमती राधा रानी के ऐसे विस्तार उनके अंश होते हैं, कृष्ण के ये स्त्री रूप उनके विष्णु स्वरूप के अंशों के संगत विस्तार होते हैं। यहाँ प्रभुपाद जी फिर उसी बात को समझा रहे हैं कि कृष्ण के जो विविध विस्तार हैं, जैसे कृष्ण अपना विस्तार करते हैं या अपने आंशिक विस्तार करते हैं, उसी प्रकार से राधा रानी के भी विस्तार होते हैं या उनके अंश होते हैं उसी प्रकार से। तो हमेशा राधा कृष्ण के साथ रहती हैं। तो जिस प्रकार से कृष्ण अपना विस्तार करते हैं और जितने रूपों में, उसी प्रकार से राधा रानी भी अपना विस्तार करती हैं उतने ही रूपों में। तो प्रभुपाद लिखते हैं आगे, इन अंशों की तुलना मूल रूप के प्रतिबिंब रूपों से की गई है। मूल तथा प्रतिबिंब रूपों में कोई अंतर नहीं होता। कृष्ण की राधनी शक्ति के स्त्री प्रतिबिंब साक्षात कृष्ण जैसे होते हैं। बिल्कुल पूर्ण रूप से राधा रानी कृष्ण की प्रकृति है। कृष्ण के अंश वैभव विलास तथा वैभव प्रकाश कहलाते हैं और राधा के अंश भी ऐसे ही हैं। लक्ष्मियाँ राधा रानी के वैभव विलास हैं तथा महिषियाँ वैभव प्रकाश हैं। ये पहले भी बता चुके हैं। उनके शरीर के अंश होने से वे श्रीमती राधा रानी के परम निर्देशन के अंतर्गत भगवान कृष्ण की लीलाओं में प्रेम के आदान प्रदान के लिए उत्तरदायी हैं। आध्यात्मिक जगत में भोग विविधता लिए होता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो प्रभुपाद जी बताते हैं। ये जो है मायावादी लोग नहीं समझ पाते हैं। मायावादी जो है निर्विशेष आनंद, वो व्याख्या कर रहे हैं कि ब्रह्म में क्या है, निर्विशेष आनंद है, ब्रह्मानंद निर्विशेष है। और प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि आध्यात्मिक जगत में भोग विविधता लिए होता है, विविध प्रकार। एक कहावत है ना, वैरायटी इज दी मदर ऑफ एंजॉयमेंट। तो विविधता में ही आनंद है। तो प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया, विविधता में आनंद है। जैसे कि आप भोजन करते हो तो विविध प्रकार की चीजें होती हैं आपकी थाली में, चपाती अलग है, चावल अलग है, सब्जी अलग है, दाल अलग है, चटनी अलग है, है ना। और ऐसा भी नहीं कि आप सबको एकदम से मिक्स कर लो और फिर खाना शुरू करो। ये ऐसा भी नहीं है कि एक बर्तन में चपाती चावल सब्जी दाल सब डाल करके उबाल करके अपना खा लो, ऐसा तो नहीं है। है नहीं? तो इस प्रकार से भौतिक जगत में आप विविधता में आनंद प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत में तो और ज्यादा विविधता है, और ज्यादा विविधता है, वैरायटी बहुत ज्यादा वैरायटी है। तो राधा रानी भी विविध जो है ना अपने विस्तार करके कृष्ण को आनंद प्रदान करते हैं, क्योंकि राधा रानी का एकमात्र यही कार्य है। प्रभा जी देख रहे हैं कि राधा रानी की एकमात्र जो जिम्मेदारी है वो क्या है, कृष्ण को आनंद देना, और कोई दूसरा कार्य नहीं है। कृष्ण जी को और कई जिम्मेदारियां हैं, जगत का पालन करना है, धर्म की स्थापना करना है, भक्तों की रक्षा करना है, तो कई प्रकार की जिम्मेदारियां हैं कृष्ण की। राधा रानी की एकमात्र जिम्मेदारी है क्या है, कृष्ण को आनंद प्रदान करना, क्योंकि उनका स्वरूप क्या है, कृष्ण की कौन सी शक्ति है, आलादनी शक्ति। तो कृष्ण को केवल आनंद प्रदान करना, और वो विविधता में आनंद प्रदान करना। तो राधा रानी इसलिए विविध अपने विस्तार करती है। जो प्रभुपाल लिखते हैं, आध्यात्मिक जगत में भोग विविधता लिए होता है। राधा रानी जैसी महिलाओं जिन्हें गोपियां या सखियां कहा जाता है, के सहचर्य से दिव्य रस की तीव्रता बढ़ जाती है। नाना प्रकार की नायिकाएं कृष्ण के लिए आस्वादन की स्रोत हैं। तो नाना प्रकार की नायिकाएं हैं, केवल एक नहीं है। अतः श्रीमती राधा रानी की ये अंग श्री कृष्ण की हिलादनी शक्ति को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। हिलादनी शक्ति मतलब आनंद देने वाली शक्ति, तो ये बहुत जरूरी है कि राधा रानी अपना विस्तार करें कई रूप में। उनके दिव्य प्रेम विनिमय वृंदावन लीलाओं के सर्वोत्कृष्ट व्यापार हैं। श्रीमती राधा रानी अपने शरीर के इन अंशों द्वारा कृष्ण को रास नृत्य तथा अन्य कार्यों का स्वाद प्राप्त करने में सहायक होती हैं। श्रीमती राधा रानी रास लीला पुष्प की मध्य पंखड़ी होने से निम्नलिखित श्लोकों में प्राप्त नामों से भी प्रसिद्ध है। तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य का अंतिम वाक्य है क्या, कि श्रीमती राधा रानी रास लीला पुष्प की मध्य पंखड़ी है। रास लीला की अगर तुलना एक फूल से की जाए तो जो सबसे बीच की पंखड़ी है सबसे ज्यादा वो महत्वपूर्ण होती है, बीच की पंखड़ी तो वो राधा रानी है। तो रास की जो है केंद्र राधा रानी है, जो कारण है वो राधा रानी है। राधा रानी के बिना रास संभव नहीं है। जैसे मेन स्विच होता है ना, मेन स्विच अगर ऑफ हो तो इस मंदिर में कहीं भी बल्ब नहीं जल सकता, कोई बल्ब नहीं जल सकता, है कि नहीं? तो राधा रानी रास लीला की मेन स्विच है, है ना। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि आगे के जो बयार है, आगे के जो बयार है उसमें जो नाम है राधा रानी के, तो ये सूचित करते हैं कि राधा रानी ही रास लीला की जो है कारण है, रास के कारण है। तो ये वैसे अगली कक्षा में श्लोक को पढ़ा जाएगा, लेकिन मैं वैसे बता देता हूँ। गोविंदानंदिनी राधा गोविंद मोहिनी गोविंद सर्वस्व सर्व कांता शिरोमणि, ये है। अच्छा, तो अब एक लीला है जिससे कि ये प्रभुपाद जी की बात है वो पुष्ट होती है कि राधा रानी के बिना रास लीला संभव नहीं है। तो पिछली बार हमने सुनाया था सिद्धाश्रम में राधा रानी पहुंची थी, कहाँ, द्वारका में। 100 साल पूरे हो गए कृष्ण के विरह के, और कृष्ण का दर्शन प्राप्त करने के लिए उन्होंने सुना था कि सिद्धाश्रम में स्नान करने से कृष्ण का दर्शन रूप में फल प्राप्त होता है। तो उसमें स्नान करने गई थी कि उसके फल स्वरूप उन्हें कृष्ण का दर्शन प्राप्त हो, और वहाँ फिर कृष्ण की पत्नियों से राधा रानी का मिलन हुआ और कृष्ण की पत्नियों का अभिमान दूर हुआ। राधा रानी से मिल करके, राधा रानी के गुणों को देख करके, और कृष्ण के व्यवहार से भी जो है कृष्ण की पत्नी को पता चला कि जो है कृष्ण के चरण राधा रानी के हृदय को कभी छोड़ नहीं सकते, एक क्षण के लिए अलग नहीं होते हैं कृष्ण के चरण। तो आपको याद है कि वो क्या घटना हुई थी, जिसे पता चला था कि कृष्ण के चरण राधा रानी के हृदय से एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होते। कृष्ण के पैर में छाले पड़ गए, क्यों, क्योंकि राधा रानी को गर्म दूध पिला दिया तो कृष्ण के पैर में छाले पड़ गए थे। अब कृष्ण की पत्नियों की इच्छा है राज करने की, तो राज के बारे में उन्होंने केवल सुना है, द्वारका में तो राज कभी होता नहीं। तो कृष्ण की पत्नियों की इच्छा है, क्योंकि यहाँ राधा रानी है और बच्ची गोपियां हैं, तो उनकी इच्छा है राज देखने की। तो इसमें लिखा है गृह चिंता में, श्री राधिका और गोपियों का भगवान कृष्ण में परम उत्कृष्ट प्रीति देखकर उन सब रानियों ने राधिका का रासोत्सव देखने की इच्छा करके कहा, श्री राधाया परम प्रीति ज्ञात्वा गोपी गण से हरिमराज पुत्र सम्राट प्रेक्षण सुकाम। ये राजपुत्रिया है, ये राजपुत्रिया राजा की पुत्रियां हैं, ये इनकी उत्सुकता है क्या राज देखने के। अब राजपुत्रियां बोलेंगी आपकी भक्त गोपियां धन्य है, क्योंकि उनके हृदय में प्रेम लक्षण संयुक्त भक्ति नित्य विद्यमान रहती है। ये कृष्ण की पत्नियां कह रही है, किससे कह रही है, किससे कह रही हैं, नहीं कृष्ण से कह रही है, कृष्ण से कह रही है ये आपकी भक्त गोपियां धन्य है, क्योंकि इनके हृदय में प्रेम लक्षण संयुक्त भक्ति नित्य विद्यमान रहती है, इसी से वे सदा रास रंग में सदा बोल रहती है। उनके तप का वर्णन कैसे किया जाए, इनके तपस्या का वर्णन कैसे किया जाए। धन्या धन्या गोप्त सुते भक्ता प्रेम लक्षण संयुता या प्राप्त रास रंगे वह आताम किम वर्णते तपाम। हे माधव, वृंदावन में आपने जिस प्रकार रास किया था उसे हम देखना चाहते हैं। हे प्रभु, यदि उचित समझ है तो हमारी साध पूर्ण कर दीजिए। अगर उचित समझे, अगर हमको आप योग्य समझते हो, जैसे अर्जुन ने कहा कि अगर उचित समझो तो मुझे यूट्यूब दिखलाओ अपना, है ना। तो विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं, वृंदावने कृतोरासो विघ्नायन माधवो दृष्टो यदि तुम मन दे प्रभु, क्योंकि समय आप भी यही हैं, श्री राधिका भी यही हैं और गोपियां भी यही हैं, हे देवेश, इसलिए यहाँ रास होना उचित है, अन्यथा रास होने की कोई संभावना नहीं है। तम सत्र तथा राधा गोपियां सर्वा ब्रजांगन स्वयं सत्र देवेश रासो योग्यो भवेद है। हे जगन्नाथ, आप हमारा मनोरथ पूर्ण कर दीजिए। हे मनोहर, रास क्रीड़ा के सिवाय हमारा और कोई मनोरथ नहीं है। पूर्णम कुरु जगन्नाथ अस्माकं तु मनोरथम प्रभु मनोरथो न्यो नाम रास क्रीड़ां विना हरि। उन रानियों के वचन सुनकर हस्तिपुर भगवान अपनी प्रेम भरी वाणी से उनको मोहित करते हुए बोले। अब भगवान क्या कहते हैं, इससे पता चलता है कि भगवान जो है राधा रानी के अधीन है। तो भगवान क्या कहते हैं, हितासाम मजा श्रुत्वाम भगवान प्रसन्न प्रायता प्रेम संयुक्तो गिरवे सम्मोहयन। भगवान क्या कहते हैं, हे सुंदरियो, राज की अधीश्वरी कौन है, राधा है। अतः राज तभी हो सकता है जब उनकी इच्छा हो। अच्छा हो कि आप उन्हीं से पूछें, तो मैं तो उनका सेवक हूँ, उनकी इच्छा होगी तो राज हो सकता है, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। राशेश्वरिया तो राधाया मनस्केन्द्रम तो मंगना, मनस्केन्द्रम तो मंगना सदा रासो भवेदत्र भवति भिक्षु प्रेक्षताम। भगवान के वचन सुनकर रुक्मणी आदि रानियां राधा के पास गईं और बड़े प्रेम के साथ हंसती हुई बोली, सिद्धि रुक्मिण्या राधा मित परम प्रेमणा राहो प्रहसिता। अब देखो राधा रानी से बहुत विनम्रता पूर्वक और जो है गुणगान करती हुई बात कर रही है प्रसन्न करने के लिए। उन्होंने कहा, हे रंभोरु, हे चंद्र बदने, हे ब्रज सुंदरी, हे राजपुरी, हे सखी, हे शील रूपे, हे राधे, हे सुकीर्ति कुल कीर्ति करे, हे सुभांगे, हम सब आपसे कुछ पूछने आए हैं। रंभोरु चंद्र बदने ब्रज सुंदरी से राजेश्वरी प्रियतम सच तेल रूपे राधे सुकीर्त कुल कीर्ति करे शुभंगे स्वाम प्रस्तुमागतवती सकला वयस्म। यहाँ रस सहायक राशेश्वर श्री कृष्ण विद्यमान है, आप राशेश्वरी और अन्य गोपियां भी उपस्थित हैं, रस पान के लिए उत्सुक हम लोग भी हैं। अतः हमारी यही इच्छा है कि यहाँ रास हो, क्योंकि रास हमको बहुत प्रिय है। राते स्वरूप चलताते रस प्रदायी राते स्वरे तम अपि गोपे वरांगनाश्च एवं वयम् इति सर्व विभव रसार्थे रासम कुरु प्रियतमे तथा प्रियम। अब श्री राधिका बोली, अब राधिका क्या उत्तर देती है, राधा रानी में कितनी जीवता है। देखिए राधा रानी क्या बोलती है, राधेश्वर सबसे परे और संतों पर कृपालु श्री कृष्ण यदि रमण करना चाहें तो रास उत्सव हो सकता है, तो उनकी उत्कृष्ट सेवा करके और बड़ी भक्ति से पूजन करके उन्हें आप अपने वश में करो, राधा रानी के श्री कृष्ण को प्रसन्न करो। राधेश्वर परमस्य सताम कृपालु ग्रंथम मनो यदि भवे तु तदाश्रया परमया परे आच भक्त्या संपूज संकिलवती कुरुते प्रियसाम। अब राधा की बात सुनकर रानी उन्होंने श्री कृष्ण की स्वीकृति की बात बताई, उन्होंने बताया कृष्ण को स्वीकार है, तो तथा क्या कर रहा था प्रसन्न राधाया वचनम कृत्वा श्री कृष्ण उत्तम तथा वदन तथा सुतोक्त्वा सा राधा प्रसन्ना भूम। अब ये वैसाखी पूर्णिमा को कुछ सिद्ध आश्रम में संध्या समय राज का आरंभ हुआ, ये भी शायद वैसाख समझना है, वैसाख के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, तो चार दिन के बाद वैसाखी पूर्णिमा आने वाली है, तो वो दिन होगा जो कि द्वारका में जो है राज हुआ है, बुद्ध पूर्णिमा भी है। अच्छा तो माधवे पूर्णिमायां तु पुण्य सिद्धाश्रमे शुभे प्रदोष काले चंद्राभे दासारंभो बभूव। प्रदोष काल में, प्रदोष काल जानते किस समय होता है, नहीं प्रदोष काल होता है शाम को, रात को 8:10 से 10:34 तक प्रदोष काल होता है, 2 घंटे 24 मिनट का। तो प्रदोष काल में चंद्रमा का उदय हुआ, पूर्णिमा की रात है, चंद्रमा का उदय हुआ और रात प्रारंभ हुआ। राधेश्वरी राधा के साथ राधेश्वर रसिक श्री कृष्ण रास क्रीड़ा करने लगे, तो उनकी वैसे ही शोभा हुई जैसे रति के साथ विराजमान काम योग की शोभा होती है। राधेश्वर रासार्थे राधेश्वरिया समन्वित राजराजे रसिको यथारत्यारतीश्वर। उस समय जितनी गोपियां और जितनी रुक्मिणी आदि राज करने आई थी, अकेले भगवान श्री कृष्ण उतने ही रूप में परिणत हो गए। अब तो और ज्यादा संख्या हो गई कृष्ण की, और आप जानते हैं गोपियों के 100 युद्ध आए हुए हैं वहाँ पर, एक युद्ध में 100 करोड़ गोपियां हैं और 100 युद्ध हैं, आप सुन रहे हैं, और यहाँ 16,108 और कृष्ण की पत्नियां हैं, ये सब आप गिनती जोड़ो कितना हुआ, तो कितना कृष्ण ने अपना विस्तार किया है, कितनी संख्या है कृष्ण की। अकेले भगवान श्री कृष्ण उतने ही रूपों में परिणत हो गए जैसे दो दो नारियों के मध्य एक एक कृष्ण दिखाई देने लगे। यावती गोपिका सर्वां यावती राज कन्यकां तावन रूप धरो रेजे एका कृष्णो दयोर्दयो। मृदंग मजीरा और वीणा के शब्द और कलकंठी सुंदरियों के सामूहिक स्वर, कलकंठी सुंदरियां, कलकंठी मतलब जिनका कंठ सुंदर है, मतलब मधुर जिनका कंठ है, तो जितनी सुंदरियां हैं उनका कंठ बहुत मधुर है। मनोहर नूपुरों एवं करधनियों के निनाद मुखरित हो उठे, कालवेणो मृदंगाना कलकंठ सचीजन मलगुनु पुरखांची नाम मित्र शब्दो बभुन महान भून। करोड़ों संदर्भ जैसे सुंदर कौन है? कृष्ण है। करोड़ों संदर्भ जैसे सुंदर है, संदर्भ कोटि कमनी है। करोड़ों संदर्भ जैसे सुंदर वनमाला पहने मकराकृति कुंडल धारण किए। कुंडल कैसे हैं? मकराकृति, मकर की आकृति के। पीतांबर किरीट कंकर और बाजूबंद पहनकर भगवान ने अपना श्रृंगार किया था। कोटि कंदर लावण्याम तरंगी कुंडल मंडिता सीतांबर धरोराजम किरीटे कटकांगद। राजेश्वरी राधा के साथ गाते हुए भगवान राजेश्वर वैसे ही शोभित हुए जैसे ताराओं के साथ चंद्रमा की शोभा होती है। राशेश्वरिया समम गायन राशे राशेश्वरासनम स्त्री गणे सहित राजन चंद्र तारा गणे। इस प्रकार रासोत्सव की वह आनंदमयी एवं शुभरात्रि क्षण भर के समान व्यतीत हो गयी। एवं सर्वानि साराजं क्षणवन्द्रास मंडले सतीता भून महाराजन महानंद मई शुभ। उस राज मंडल
को देखकर रुक्मिणी आदि उत्तम स्त्रियां परम आनंद को प्राप्त हो गयी और उनकी आकांक्षा पूर्ण हो गयी। श्री राज मंडलम दृष्ट्वा रुक्मिण्याद्या स्त्रियो वरा जन्मुक्ता परमानंदम सर्वा पूर्ण मनोरथ। रात के अंत में रुक्मिणी आदि सभी रानियां और पटरानियां प्रेम परायण होकर परिपूर्णतम परमेश्वर श्री कृष्ण से बोली। अब ध्यान दीजिए कि कृष्ण की पत्नियां जो है कृष्ण से क्या कह रहे हैं। रात में के बाद दृष्ट्वांग परिपूर्ण समम साक्षात श्री कृष्णम पुरुषोत्तम राशांते रुक्मिणी मुख्या प्राहु प्रेम परायाम। अब कृष्ण की पत्नियां क्या कहती हैं? हे नाथ, इस मनोहर राज रंग में आपके रूप का माधुर्य देखकर हमारा मन इस प्रकार आनंद विभोर हो गया जैसे मुनियों को ब्रह्मानंद प्राप्त होता है। दृष्ट्वा संग्रूप माधुर्यम राज रंगे मनोहरे मनोना स्वानंदम ब्रह्मानंदम यथा मुनि। ऐसा राज ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। अब वो कह रही हैं कि ऐसा राज तो कभी नहीं हुआ और ना कभी होगा। इसका कारण क्या है बताएंगे जी, कारण क्या है? रुक्मिणी आदि जो कृष्ण की पत्नियां हैं वो सोच रहे हैं कि ऐसा राज कभी नहीं हुआ और आप लोग भी सोचेंगे कुछ विशेषता है इस राज में। हे माधव, इस राज में गोपियों के 100 यूथ हैं। ये था देखो फिरा सुनो न पूछो न भविष्यति सतयूथस्थो गोपी नाम अत्र माधव वर्तते। हम सखियों सहित 16,000 रानियां और करोड़ों सखियों के साथ 8 पटरानियां हैं। पतियां षोडश साहस्रम सखी दे सहिता वयम सखी कोटि युताश्चात्रयम यस्य पत्ये महाश्रियम। तो उनका क्या कहना है कि हे माधवेश्वर, ऐसा राज तो वृंदावन में भी ना हुआ होगा। विचार सही है, कृष्ण के पत्नियों का विचार सही है कि ऐसा राज वृंदावन में भी ना हुआ होगा। क्यों है? हाँ, वृंदावन केवल गोपियां थी, यहाँ पर तो कृष्ण की 16,108 पटरानियां हैं और करोड़ों सखियां हैं, उनकी भी सखियां हैं। वृंदावन इतने तादृंभूत होगा माधवेश्वर। तो इस प्रकार रानियों की अभिमान भरी वाणी सुनकर हंसते हुए श्री कृष्ण बोले। तो भगवान को जो है अभिमान से बड़ा नफरत है, तो भगवान हंसते हुए बोले। और भगवान क्या कहते हैं? कहते हैं ये बात तो तुम्हें राधा से पूछनी चाहिए। क्यों? क्योंकि राधा रानी ने वृंदावन का भी राज देखा है और यहाँ का भी राज देखा है ना, आपने तो नहीं देखा, तो आपका तो विचार है लेकिन आपको तो आपने तो देखा नहीं है, तो आप राधा रानी से पूछो। भगवान कहते हैं एवं कृताभिमानानां रागीनां प्रसन्नहरी राहेलं पृच्छतां राधां भवतीरी परस्परम्।
श्री कृष्ण की बात सुनकर सत्यभामा आदि रानियां परम मनोहारिणी राधा से पूछने लगी। तब मन ही मन हंसी हुई राधा बोली। राधा ने कहा, बहुतेरी स्त्रियों से भरपूर होने के कारण ये राज भी अच्छा ही रहा, किंतु वृंदावन वाले राज के समान ये नहीं हुआ। राधा रानी कह रहे
ननु राधा परम छात्र सत्यभामा अधिका सर्वा कृतम किताम मनोहरा किंचन हसंती मनसी प्राह राधा परम ननुराधा परम शास्त्र बहुत्री गण संकुल पूर्व राधन समो नस्व वृंदावने भवन।
अब क्या कारण है? राधा रानी कह रही है कि वैसा रास नहीं हुआ, क्या कारण है? तो राधा रानी कहती है वो वृंदावन यहाँ कहाँ है, वो वृंदावन यहाँ कहाँ है कि जहाँ सिद्ध वृक्षों तथा लताओं से आकुल और प्रेम के धार से झुकी लताएं झूमती रहती हैं और मतवाले भौरे गुंजारते रहते हैं। वचात्र वृंदारण्यम दिव्य द्रुमे लता कुलम प्रेम भारा नतलतम मधुमत मधुव्रतम।
पुष्पों का भार वहन करती हंसों और कमलों से युक्त
और रत्नों से भरी यमुना यहाँ कहाँ है?
द्वारका में कहाँ है यमुना जी?
पुष्प्यूहान वहंती या यथोष्णी मुद्रिता सुभा हंस पद में समाकीर्णा प्रचात्र यमुना नदी।
फूलों के गोद से नदी माधुरी लताएं यहाँ कहाँ है और प्रेम पूर्ण गायन करने वाले ये पक्षी यहाँ कहाँ हैं?
माधव्यस्तु लता क्वात्र पुष्प भार नता पर प्रेम परा गायंती मधुर स्वनम।
जिसमें चंचल भ्रमर गुंजार करते हों ऐसे कुंजों और निकुंजों से भरे मंदिर यहाँ कहाँ हैं?
कमल रज को वहन करने वाली वह शीतल मंद वायु यहाँ कहाँ है?
देखा, राधा रानी ने कितनी विशेषताएं बतलाई जो द्वारका में नहीं है।
लोलाली कुंजा कुंजा क्वा निकुंजा दिव्य मंदिराम वायु शीतलो मंदो वादी पद में रजो हरन।
मनोहर और ऊंचे शिखरों और फल फूल से लगे वृक्षों और कंदराओं वाला गोवर्धन पर्वत यहाँ कहाँ है?
श्रृंगेर मनोहर गिरि गोवर्धनो चलहा सर्वत्र फल पुष्पाड्यो गरीबी क्वा करीब सहा।
कालिंदी के रमणीक पुलिन की चमकती रेती में बैत लिए बंसी बजाते मोर पंख बांधे और वनमाला पहने हुए श्री कृष्ण का वह श्रृंगार यहाँ कहाँ है?
वो श्रृंगार कहाँ है कृष्ण का?
कैसा श्रृंगार है कृष्ण का?
और कहाँ पर?
यमुना के तट पर जो चमकती रहती है।
यमुना के तट पर चमकती रहती है, कैसी चमकती है?
चांदी के समान
चमकती रहती है
और वहाँ पर बैठती है, यहाँ पर थोड़ी कृष्ण बैठती है
और बंसी बजाते हैं, यहाँ कृष्ण बंसी नहीं बजाते हैं।
मोर पंख बांधे, यहाँ कृष्ण मोर पंख नहीं बांधे हैं। वनमाला पहने हैं, यहाँ कृष्ण वनमाला नहीं धारण किए हैं।
तो श्री कृष्ण का वो श्रृंगार यहाँ कहाँ है?
श्याम और घुंघराले अल्पों वाले श्री कृष्ण का वो रूप यहाँ कहाँ है?
कृष्ण के जो है जो हल्के हैं मतलब जो खेत हैं वो घुंघराले और बिखरे हुए हैं वो यहाँ कहाँ है?
यहाँ तो सब राजाओं की वेशभूषा है,
सब बजे हुए हैं,
यहाँ पर वो कहाँ है कृष्ण का रूप?
श्रृंगेर मनोहरेर उच्चैर गिरि गोवर्धनो चलहा सर्वत्र फलपुष्पाड्यो दरिदी क्वाकरीवसाम कालिंदे पुलिने रम्ये वायुनान्वित कते बंसी वृत्रधरो मल्ल परिबरह विराजितः कुचात्र कृष्ण श्रृंगारो वनमाला विभूषितः श्यामानाम अलकानाम च वक्राणाम गंधधारिणाम भगवान कृष्ण के मनोहर गंध स्थल पर खिलते डुलते और बिजली जैसे चमकते हुए कुंडलों की शोभा यहाँ कहाँ है। विशेष कृष्ण का जो है सौंदर्य वृंदावन में वो क्या है, उनके हिलते हुए कुंडल उनके गालों में जो है बिजली जैसे चमकते हैं, तो वो कृष्ण का ऐसा सुंदर मुख कहाँ है, यहाँ नहीं है। चलितम हलितम पात्र कुंडलाभ्याम परस्परम श्रीमुखे कृष्ण चंद्रस्य गंडस्थल मनोहरे पत्रावली की सुगंध के लोभी भौरों से घिरे हुए श्री कृष्ण का प्रेम भरा दर्शन यहाँ कहाँ है, स्पर्श और हर्षण यहाँ कहाँ है। पत्रावली गंध लोभान धर्मं भृंगावली युते प्रेमणा दर्शनम चैवे स्पर्शनम हर्षणम तथा काम के तीस बाणों से देखे श्री कृष्ण के कटाक्ष का वो रस यहाँ कहाँ है। कृष्ण की चितवन कटाक्ष मतलब तिरछी चितवन वो कैसी बाण की तरह है जो हृदय को बेद देती है, तो वो यहाँ कहाँ है, कृष्ण की तिरछी चितवन यहाँ कहाँ है। हाथों से पकड़कर खींचना और हाथ से हाथ छुड़ाने का दृश्य यहाँ कहाँ है। काम है तो सिंह में कौन है काम नेत्र है तो अपांग जो रखर्षण को हस्ताभ्याम हस्तांग हस्तर्जनम निकुंजों में छुपना छुपे हुए को ढूंढना यहाँ कहाँ है। यहाँ वो निकुंज नहीं है जहाँ की छिपते हैं और फिर छिपे हुए को ढूंढते हैं और चीर हरण बैग और बंसी छुड़ाने की लीला यहाँ कहाँ है। कृष्ण की बंसी छुपी कर दी है गोपियां और बैग चोरी करती हैं, तो वहाँ यहाँ पर वो आनंद कहाँ है। लीन तम निकुंजे तुम तम मुखे न तो दर्शनम ग्रहणम गात्र की राणाम हरणम देनो वेत्रयो परस्पर प्रेम पूर्वक भुजाओं से खींचना और बार बार तन्मंत्र भुजाओं के स्पर्श का आनंद यहाँ कहाँ है। प्रेमणा चा प्रवाहोभ्याम कर्षणम चा परस्परम पुनः पुनः संग्रहणम भजे चंदन चर्चितम जहाँ जहाँ की जो लीला है वह वहाँ ही पवित्र होती है। दादा ने क्या कहा है? जो रास लीला है वो वृंदावन की है। करण क्या कहते हैं कि जहाँ जहाँ की जो लीला है वह वहाँ ही पवित्र होती है, जहाँ वृंदावन नहीं है वहाँ मेरे मन को सुख नहीं मिलता। राधा रानी क्या कहते हैं, जहाँ वृंदावन नहीं है वहाँ मेरे मन को सुख नहीं मिलता। यत्र यत्र क्रिया लीला तत्र तत्र शोभते यत्र वृंदावनम नास्ति तत्र मे नाम ना सुखम। तो इससे मुझे याद आती है वो घटना जब भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर आने के लिए तैयार होते हैं। भगवान विष्णु सब देवताओं को लेकर के ब्रह्मा शिव सब देवताओं को लेकर के गोलोक धाम में आते हैं और वहाँ बात चलती है कृष्ण के अवतार की, तो कृष्ण को भू भार उतारने के लिए आना है, तो ये बात चलती है और निश्चित हो गया कि कृष्ण आएंगे पृथ्वी पर अवतार लेंगे। तो जब सब देवता लोग चले गए तो फिर राधा रानी ने कहा मैं प्राण त्याग दूंगी, आपके बिना मैं नहीं रह सकती, आपके भी हो गए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि तो तुम चलो मेरे साथ। तो राधा रानी कहती हैं कि जहाँ वृंदावन नहीं है, जहाँ यमुना नहीं है, जहाँ गोवर्धन नहीं है, हैं वहाँ मैं नहीं जा सकती। तो फिर कृष्ण कहते हैं ठीक है, फिर वृंदावन गोवर्धन यमुना सब चलेंगे तुम्हारे साथ, तो 84 वर्ष का वृंदावन भी तुम्हारे साथ आएगा। तो राधा रानी के कारण ये जो है 84 कोष का जो ब्रज मंडल है वो आया राधा रानी के कारण। तो ये है ना राधा रानी ही कारण है। तो राधा रानी क्या कहती है, यत्र यत्र तया लीला तत्र तत्र वै शोभते यत्र वृंदावनम नास्ति तत्र मे नाम ना सुखम। राधा रानी के वचन सुनकर पटरानियों ने अपने राज का मान त्याग दिया और वे विस्मित और हर्षित हो गयी। राधा वाक्यम तथा श्रुत्वा सर्वा पट्य महाश्रिया जहुर्मानम स्वरा सत्य विस्मिता हर्षिता चिता। तो ये जो घटना है ये मैंने इसलिए सुनाई क्योंकि प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं कि जो राज नृत्य है वो एक पुष्प के समान है और पुष्प के जो मध्य पंखुड़ी है वो राधा रानी है। तो राधा रानी के बिना राज नहीं हो सकता है, संभव नहीं है कि कृष्ण ने जो है घोषित किया। तो इसलिए राधा रानी का बहुत महत्व है, सर्वाधिक महत्व है राधा रानी का। तो कृष्ण की जितनी लीलाएं हैं सब दिव्य हैं, लेकिन सबसे अधिक दिव्य जो है कृष्ण की वो लीला है जो गोपियों के साथ होती है और उसमें भी विशेष रूप से जो है रास लीला है। गोवर्धन की उत्पत्ति भी बताई गई है कि कैसे हुई, गोलोक धाम में राधा रानी ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि रास नृत्य के लिए योग्य स्थान आप जो है बनाइए, भगवान से प्रार्थना की। तो भगवान कृष्ण जो है राधा रानी की आवश्यकता समझ करके उनके हृदय से जो है प्रेम से जो है सिक्त एक तेज निकला और वो जो है गोवर्धन पर्वत का रूप धारण करता है और फिर वो जो है बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, बहुत बड़ा हो गया और इतना बड़ा हो गया कि 100 करोड़ योजन का विस्तार हो गया गोवर्धन का। 100 करोड़ योजन लंबा और 50 करोड़ योजन चौड़ा और 10 करोड़ योजन ऊंचा गोवर्धन पर्वत। पता है एक योजन 8 मील का है या 12 किलोमीटर का, तो आप 12 से गुणा करो तो किलोमीटर हो जाएंगे। 100 करोड़ योजन ऊंचा, तो फिर ये इतना बढ़ता जा और बढ़ता जा रहा था तो जो गोलोक के निवासी हैं वो भयभीत हो गए क्योंकि फिर उनको रहने के लिए स्थान कहाँ मिलेगा है? तो कृष्ण के शरण में आए कि हमें फिर रहने के लिए स्थान कहाँ मिलेगा। तो कृष्ण जो है एक थप्पड़ मारा उसको, अरे तू क्या कर रहा है, तू बढ़ता जा रहा है तो यहाँ के बाकी निवासी फिर कहाँ रहेंगे। तो कृष्ण ने जब थप्पड़ मारा तो फिर वो घटने लगा, तो फिर लंबाई उसकी 100 करोड़ योजन से 50 करोड़ योजन की रह गई और जो ऊंचाई थी 50 करोड़ योजन की तो वो रह गई 10 करोड़ योजन, नहीं चौड़ाई चौड़ाई 50 करोड़ योजन से 10 करोड़ योजन रह गई और जो ऊंचाई थी 10 करोड़ योजन वो रह गई 1 करोड़ योजन। तो अभी जो है जो गोवर्धन पर्वत है गोलोक धाम में वो 50 करोड़ योजन लंबा है और 10 करोड़ योजन चौड़ा है और 1 करोड़ योजन ऊंचा है और इसको सत्तरिंग कहते हैं। सत्तरिंग का मतलब 100 शिखर है इस गोवर्धन पर्वत के और उस शिखर के ऊपर जो है ना वो है रास मंडल है। रास मंडल 10 योजन का जो है विस्तार का रास मंडल है। 10 योजन का मतलब कितना हुआ, 120 किलोमीटर 120 किलोमीटर के विस्तार का रास मंडल है सत्रंग पर्वत उसको बोलते हैं। अब किसी का कोई प्रश्न है या कोई समीक्षा आप लोग कुछ कहना चाहेंगे या कुछ पूछना चाहेंगे। तो उनका प्रश्न है कि वैभव प्रकाश और वैभव विलास में क्या अंतर है। तो मैं तो इतना ही जानता हूँ कि वैभव विलास लक्ष्मियाँ हैं और वैभव प्रकाश महेशियाँ हैं। जो लक्ष्मियाँ हैं उनसे ज्यादा आनंद महेशियों से प्राप्त होता है। वैकुंठ में जो लक्ष्मी जी हैं विष्णु के साथ होती हैं, अपने ऐश्वर्य के साथ लक्ष्मी और विष्णु के बीच में काफी मर्यादाएं होती हैं, इसलिए उनमें इतनी घनिष्ठता नहीं होती जितनी घनिष्ठता द्वारका की महिषियों में है। द्वारका की महिषियाँ कृष्ण के घर की देखभाल करती हैं,
तथा कभी कभी उनके साथ हंसी मजाक भी करते हैं, परंतु ये बात लक्ष्मी जी में नहीं है। लक्ष्मी जी विष्णु के साथ कभी मान नहीं कर सकती। संग द्वारका में सत्यभामा कृष्ण के साथ कई बार रूठ जाती हैं।
भगवान विष्णु जो है भगवान कृष्ण के विलास विस्तार है, ठीक है, विलास विस्तार। और कोई प्रश्न आता है? उनका प्रश्न है कि द्वारका में भगवान कृष्ण के मोरपंख नहीं दिखाया जाता हमेशा, मोरपंख भगवान कृष्ण को, ऐसी कई चीजें हैं जो दिखाई जाती हैं लेकिन वो होती नहीं है, लेकिन दिखाने का कुछ कारण होता है। कृष्ण को जो है द्वारका में मोरपंख अगर दिखाया जाता है तो उसका एक कारण है, वैसे है नहीं है, क्योंकि कृष्ण की पहचान होती है, कृष्ण के रूप की पहचान करने के लिए। तो इस समय बहुत सी चीजें हैं जो उस समय नहीं थी, लेकिन हमें दिखानी पड़ती है, कृष्ण में दिखानी पड़ती है, अगर ना दिखाएं तो पहचान नहीं होगी, ठीक है ना। जैसे हनुमान जी का भी हमने कई शास्त्रों में मतलब खोजा भी तो उनके हाथ में गदा है ही नहीं। हनुमान जी के हाथ में कहीं गदा नहीं, ना गदा का उन्होंने प्रयोग किया, किसी युद्ध में उन्होंने गदा का प्रयोग नहीं किया, लेकिन गदा हमेशा दिखाई जाती है ना। उनके पत्थर है, वृक्ष है, और अपने नाखून है, थप्पड़ है, लाते हैं, लेकिन गदा का कभी प्रयोग नहीं किया है ना, लेकिन गदा हमेशा दिखाई जाती है उनके हाथ में, है ना। तो ये पहचान के लिए है। अभी जो जो दिखाया जाता है, जो भी चित्र हैं या जो मूर्तियां हैं उनके हाथ में गदा दिखाई जाती है, ये पहचान के लिए है। तो गदा मतलब क्या है कि युद्ध की तैयारी, कि मतलब वो हर प्रकार के युद्ध के लिए वो हर समय तैयार रहते हैं, तो ये जो है एक पहचान है, लेकिन गदा वैसे कहीं नहीं। भीम के भाई थे, भीम के हाथ में हमेशा गदा नहीं है, भीम सेन जो है मुख्य रूप से युद्ध करते हैं धनुष बाण से, और फिर वो मुद्गर भी लेते हैं या शक्ति भी लेते हैं, शतकनी भी लेते हैं, गदा भी लेते हैं, कोई जरूरी नहीं कि गदा ही मतलब हो, और मल्ल युद्ध भी करते हैं भीम सेन। तो ये चीज जो है ना कभी कभी पहचान के लिए चित्रों में दिखाई जाती है, लेकिन वो हमें समझ लेना चाहिए कि जना वर्णन नहीं है ऐसा शास्त्रों में। और कोई प्रश्न किसी का? धन्यवाद। मोहन बाबा प्रभु श्रीमद भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक की व्याख्या में बता रहे हैं कि जो वो श्लोक है, तो वैसे सामान्य रूप में तो भगवान कृष्ण की स्तुति है वो, लेकिन उसको राधा परक व्याख्या भी उसकी की है, जीव गोस्वामी ने राधा परक व्याख्या की है, तो उसमें सत्यम परम जीव ही मतलब परम सत्य वो राधा रानी को स्वीकार कर रहे हैं। और जन्म आदि अस्थि यथा, तो आदि का मतलब आदि रस जो है माधुर्य है, आदि रस माधुर्य रस है, तो जिनसे जन्म हुआ है आदि रस का माधुर्य से जन्म हुआ है वो राधा रानी है। गोविंदम आदि पुरुषम, तो कृष्ण आदि पुरुष है और राधा रानी उनकी आदि प्रकृति है, और जो आदि रस है वो माधुर्य रस है जो राधा रानी के साथ हुआ। फिर राधा रानी से और भी विस्तार हुए गोपियों के, और कृष्ण के शरीर से फिर गोपियों के विस्तार हुए, बहुत से गोप हुए, और फिर जो है गोलोक धाम भी उसका भी प्रकट हुआ, और जो है वन है, नदियां हैं, निकुंज हैं, पर्वत हैं, वो सब कृष्ण के शरीर से प्रकट हुए। तो राधा रानी जो है आदि रस के कारण है। और कोई प्रश्न किसी का समीक्षा?
तो मुख्य बात इस घटना में ये है कि कृष्ण की पत्नियों ने इससे पूर्व रास लीला नहीं देखी है।
जो कृष्ण की पत्नियां हैं तो उनका विचार था कि वृंदावन में ऐसा रास नहीं हुआ होगा, उनका विचार, उन्होंने तो देखा नहीं ना, उनका विचार था कि वृंदावन में ऐसा रास नहीं हुआ होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वृंदावन की सब गोपियां हैं, गोपियों के स्वयं है, राधा रानी है, सब हैं, और हम और उसमें जुड़ गए तो रास का और ज्यादा आनंद आ गया। तो ये जो है ना अभिमान, किसने कुछ अभिमान देखा उनके अंदर, तो किस अभिमान को हमेशा दूर करते हैं अपने भक्तों के, है ना। तो किसने अभिमान दूर करने के लिए कहा कि राधा रानी से पूछो, आप राधा रानी जानती हैं इस बात को। तो राधा रानी ने ये बात बताइए कि वृंदावन में जो विशेषताएं हैं वो यहाँ कहाँ है और कृष्ण का जो रूप है वो विशेषता यहाँ कहाँ है। इसलिए राधा ने कहा कि जहाँ जहाँ की जो लीला है वो वहाँ ही शोभित होती है। जहाँ वृंदावन नहीं है वहाँ मेरे मन को सुख नहीं मिलता, राधा रानी कहती है। उसी कारण से फिर हमने वो चर्चा की कि वृंदावन को ही आना पड़ा, जो ब्रज भूमि है वो भी आई राधा रानी के कारण। और कोई समीक्षा किसी की कोई प्रश्न है? तो मोहन लोग कह रहे हैं कि कुरुक्षेत्र में भी राधा रानी ने जब दर्शन किया कृष्ण का तो प्रसन्न नहीं हुई, क्योंकि कृष्ण राज की वेशभूषण थे। तो वो वृंदावन नहीं था, वो वन नहीं थे, वो गोप वेद नहीं है कृष्ण का। यहाँ सैनिकों से घिरे हैं, रथों से घिरे हैं, हाथियों से घिरे हैं, है ना। इसलिए राधा रानी प्रसन्न नहीं हुई, जबकि है वही कृष्ण और वही राधा है, लेकिन वो स्थान नहीं है, इस कारण से वो प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। धन्यवाद। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री राधा पार्षदार्थी ललिता विशाखा की, श्री श्री गौंडताय भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की।